We are all children. I take it including myself. So children will ask child will answer. Please, please. I think I can hear. I will repeat the question. कोबरा वाला घटना मेरे साथ भी हो चुका है. पुणे में एक कोबरा पार्क है. फिजिकल फियर के ऊपर क्वेश्चन है तो वहाँ पे एक ब्लैक कोबरा एक ग्लास के केज में है और चूंकि मैंने ये घटना पढ़ा हुआ था माँ का तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या होता है. तो मैंने जाके अपना हाथ वहाँ रखा. मुझे पता है कि ये तो ग्लास है. माइंड को पता है. इतना स्विफ्ट रिएक्शन था उस कोबरा का कि जस्ट इमीडिएटली माई हैंड वेंट. Then I realized, तो वो इतना सॉलिड था कि नाउ आई वॉन्ट टू डू द एक्सपेरिमेंट अगेन. क्योंकि अब ठीक है मैं प्राइम हो गया हूं लेकिन वो मेरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं. हालांकि फिजिकल माइंड ऑल दो आई नो इट. सो नेक्स्ट स्टेप वॉज की ओके आई विल कीप इट. नाउ आई नो. नाउ ये ऑफकोर्स ये कंडीशनड एक्सपेरिमेंट है. पता है फाइनली नहीं होगा तो यू कैन ओवरकम दैट. एक दूसरा हुआ था स्विमिंग जब सीख रहा था सी स्विमिंग. तो फिजिकल फियर बहुत डीप रूटेड होता है क्योंकि वो एक कई मामले में ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है. माताजी से एक बार किसी ने पूछा था कि अगर मैं जंप करने वाला हूँ और मेरे अंदर एक अनइजीनेस फील होता है तो मुझे उसको ओवरकम करना चाहिए कि नहीं. माँ कहती अगर अनइजीनेस है देन डोंट डू इट. तो ये एक थोड़ा सा इसमें एक वो है क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो आपको इंडिकेशन मिल रहा है. शरीर कह रहा है कि मत करो. वो फियर नहीं है वो एक कॉशनिंग है. तो फिजिकल फियर बहुत अधिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है हमारा. लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरकम करना है तो उसका एक ही तरीका होता है सभी तरह के फियर का और वो होता है बाय फेसिंग द सिचुएशन. और उसको जैसे जैसे हम फेस करते हैं. अब हमारे मिलिट्री में कमांडो ट्रेनिंग होती है तो यही उनका तरीका होता है. क्या होता है कि बैटल तो नहीं हो रही युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और इतना कठिन ट्रेनिंग होता है कि अगर उनको पहले से पता हो तो बहुत कठिन होगा. लोग जाएंगे नहीं बोलेंगे नहीं. और शरीर जवाब दे जाता है. ऐसा बताते हैं कि वो लास्ट डे जो हालत होती है वो पिट्ठू ले करके चल रहे हैं जो इतना किलोग्राम का. मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हम लोग इतना हालत हो गई थी कि सामने गड्ढा था रियलाइज नहीं किया लीडर ने वो गिरा उसके पीछे दूसरा गिरा तीसरा गिरा सब गिरते. लेकिन वही ट्रेनिंग कर करके अंत में हमारा बॉडी रीट्रेन्ड हो जाता है. तो अब ट्रेनिंग क्या है अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो ट्रेनिंग यही एक प्रोसेस है जिससे हमारे सेल्स के अंदर शरीर के अंदर भय अल्टीमेटली समाप्त हो जाता है. क्योंकि हम उसको इतने बार फेस करते हैं ओवरकम करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ये चीज आ जाती है. मन में तो आ जाएगा इजिली बट शरीर के लिए दिस रिक्वायर्स ए रिपीटेड ट्रेनिंग. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि जो हमारे और प्रबुद्ध पार्ट हैं ये माताजी बताती हैं जैसे हायर माइंड है उसको ये इम्प्रेस करना है शरीर के ऊपर कि देर इज नथिंग टू फियर. तो वो धीरे धीरे उसकी बात वो फिजिकल बॉडी के अंदर उसका मीडिएटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिकल माइंड वो जाता है. तीसरा एक तरीका होता है जो मंत्र का शरीर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट बहुत सुंदर होता है. और ये चीज़ भी मैंने देखी है कि ऐसी सिचुएशंस जिसमें फिजिकली मतलब साइकोलॉजिकल नहीं फिजिकल लेवल पे एक भय है वहाँ जस्ट रिपीटिंग द मंत्रा तो उसमें माँ बताती हैं कि बेस्ट है कि अगर तुम्हारा अपना कोई मंत्र है जो तुम्हारे अंदर स्वाभाविक रूप से आता है, ऑटोमेटिकली इट वर्क्स लाइक मैजिक, फिजिकल चीज है चारों तरफ से. मतलब ऐसी भी घटना मैंने फेस की है जहाँ पे वो मतलब जो टेररिस्ट टाइप के लोग, नॉट एग्जैक्टली, वो आ गए और वो मंत्र स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ऐसा काम करता है जैसे कुछ नहीं है और आप उससे निकल भी जाते हो और आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ये कैसे संभव हुआ. तो वो मंत्र इज ए वेरी वेरी पावरफुल वन स्टेप रेमेडी. तो आप सब लोग मंत्र को अपने अंदर, अपना अपना मंत्र जो आपके अंदर आए स्वतः ही उसको जप करने का, मंत्र के द्वारा बीच बीच में कनेक्ट करने का ये अभ्यास करना चाहिए. तो फिजिकल फियर को ओवरकम करने के ये कुछ उपाय हैं. ये करते थे हम लोग. एक और तरीका होता था, जैसे लोग ये करते थे हनुमान चालीसा. अब मैं रियली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये बार बार रिपीट करते हुए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. अब क्या होता है, वो हनुमान जी का नाम, तो नाम जो होता है भगवान का उसके अंदर बहुत शक्ति होती है. वो केवल फेथ नहीं है, भगवान के नाम का स्पंदन ही भय भंजन. इसीलिए उनको कहा गया है भय भंजन. माँ 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 भय भंजन. अंदर से भी भय चला जाएगा और भय के जो बाहरी कारण है वो भी निर्मूल हो जाएंगे. हाँ बेटा बोलो. क्या बोले थे? हाँ अरे भूत 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 है कि नहीं है, क्या करेगी जान के. संसार में बहुत कुछ है, भूत भी है, लेकिन भूत बहुत डरपोक होता है. वो बेचारा तो खुद ही भूत को क्या होता है. भूत होता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय हमारे कुछ तत्व हैं वो सीधा डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो वो बेचारे भटके हुए घूम रहे होते हैं. तो उनके मेरा अब तुमको एक स्टोरी बताते हैं जैसे तुमको डर नहीं लगे. हाँ रियल स्टोरी. तो बैठ जाओ बैठ जाओ. तो अभी जहाँ मैं रहता हूँ आश्रम का एक घर है जिसमें लोग कहते थे इसमें भूत आता था, भूत आता है, भूत रहता है. तो मैं बोला कोई बात नहीं है भूत से हो जाएगा. तो जब मैं गया पहले दिन मैं स्वप्न में आया, तो फिर मैं उसको कहा तुम अपने घर रहो, मेरा अपना घर है, तुम्हारा अपना जगह. फिर दो दिन बाद, फिर एक हफ्ता बाद, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो माताजी से कहा कोई बहुत तकलीफ़ में है उसको थोड़ा आप शांति दे दीजिए. और मुझे पता था कि ये कहाँ से आ रहा है. वहाँ जाके मैंने उस वृक्ष के पास कहा देखो तुम यहाँ रहो, मैं तुमको कोई परेशान नहीं करने वाला हूँ, और मेरे को मेरे घर में रहने दो. मैं जगत जननी का बच्चा हूँ तो इसलिए ज़्यादा करीब आने का चेष्टा मत करना, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है. वो दिन से सब खत्म. क्या होता है ना, वो भयभीत है जो इंसान या भूत या जो भी डराने का चेष्टा करता है ना आपको, वो खुद बहुत डरा हुआ है. आप ये मान के चलो इंक्लूडिंग द टेररिस्ट. और यदि आप डरना बंद कर दोगे ना जिस दिन, और मुड़ के बोलोगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इट विल कोलैप्स. तो ये भूत ऐसा है, डरना नहीं कभी किसी भी चीज से संसार में, क्योंकि सबके ऊपर कौन होता है, वो किसके अंदर होता है, फिर उसके बाद क्या सोचना. भूत क्या, कोई भी शक्ति इस संसार की उस संसार की कुछ नहीं कर सकती यदि आप इस श्रद्धा से जीवन को जी रहे हैं कि माँ मेरे अंदर है, माँ मेरे साथ है. लेकिन ये आपको जीवन शैली में लाना है. अचानक एक दिन उठ के सुबह बोलोगे अरे रे माँ, तो भी काम करेगा. आर्त की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, लेकिन अगर इसको जीवन में डाल लोगे तो माँ कहती है कि अगर ये तुमने राइट एटीट्यूड रखा अंदर में, अशांत नहीं हो, शांति से शांत हो अंदर में, घबरा नहीं रहे हो, तो माँ कहती है कोई तुमको मारने के लिए तलवार उठा के बंदूक उठा के खड़ा है तो भी वो नहीं कर पाएगा. कोई चीज उसको रोक लेगी, नहीं करने देगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र बनेगा, ऐसा कुछ होगा जो आपको भी पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर क्या हुआ, उसके आंख में पट्टी पड़ जाएगी या उसको अंदर में क्या महसूस होगा, लेकिन वो आपको हानि या क्षति नहीं पहुंचा पाएगा.
मैं जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो अच्छा था ना, अंग्रेजों के जाने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है?
अंग्रेजों के पहले मुगल आए थे, ओके उसके पहले, बहुत पहले निश्चित रूप से कोई भी एजुकेशन सिस्टम, बैठ जाओ अभी इधर आ जाओ जिससे मैं तुमको देख भी सकूं थोड़ा सा इधर में, हाँ बैठ जाओ। अंग्रेजों के जमाने के पहले का एजुकेशन सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा विषय है संक्षेप में। जो भारतवर्ष का पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था जैसे एक माँ अपने बच्चे को एजुकेट करती है तो किस लिए एजुकेट करती है? कि उसके अंदर जो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, वो बाहर निकले, है ना, ये चाहती है माँ। उस समृद्ध भी हो, संस्कृति भी हो उसके अंदर, विचार भी सुंदर हो, शरीर भी सबल हो और इंटेलिजेंट भी हो, ये चाहती ना। और जो अंग्रेज आए वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर ये बहुत अच्छे हो जाएंगे तो ये हम कैसे राज्य करेंगे इन पर। तो वो चाहते थे कि हम लोग को ऐसा शिक्षा दें जिससे हमको ये लगे हर समय कि हम अशिक्षित हैं, है ना। तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा दी जहां हमारे विकास की जगह केवल हमको अपना गुलाम, दास बनाने के लिए हमको उपयोगी बनाया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, तुम उड़िया ठीक से बोल लेते हो, अंग्रेजी उतना फ्लुएंटली बोल पाते हो? नहीं बोल पाते। अगर कोई, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तुम्हारे पास जो अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है तो तुमको क्या लगेगा उसके सामने? हाँ लगेगा ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्यों? वो उसकी मातृभाषा है, हो सकता है वो मूर्खता बोल रहा हो। मैं पूरे संसार को देख के ये बात बता रहा हूं। ऐसे देश हैं, रशिया है, वहां नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते इंग्लिश। मैंने एक बार इंग्लिश में पानी तो दे दो रशियन, खत्म। तो पॉइंट करके बताना, और वो गर्व है उनको, इस पर कोई समस्या नहीं है। स्पेन नहीं जानते थे, मेरी टॉक्स होती थी ट्रांसलेट करते थे वो स्पेनिश में, उनको एक क्षण भी नहीं लगता कि अरे हम अंग्रेजी नहीं जानते। जर्मनी, फ्रेंच नहीं जानते हैं, हमको ये लगता है, हमको ये लगता है। क्यों? हमारे अंदर ये मानसिकता भर दी गई, ठीक है। तो अंग्रेजी जाननी चाहिए, भाषाएं जितनी जानो उतना अच्छा है, लेकिन दासत्व की मानसिकता क्या होती है? मैं कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता हूं, इससे बेटर नहीं हो सकता हूं। तो उनकी शिक्षा हम लोगों को दासत्व के लिए तैयार करती थी। दासत्व तो समझ रहे हो, लेकिन जो भारतवर्ष की शिक्षा है हमको स्वामित्व के लिए तैयार करती है। अपना भी स्वामी, अपने नेचर का मास्टर, और फिर संसार में भी जो कुछ है उसका मास्टर। तो निश्चित रूप से, अब ये बहुत विशाल विषय है, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जान लो कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत की जीडीपी, भारत की जो सारा धन अभी जो है उससे 6 गुना ज़्यादा था, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और यहाँ से लूट करके उधर जीडीपी बन गया और यहाँ पर जो हुआ, लेकिन भारत भारत है, देखो हम लोग कितने अच्छे से फिर से खड़े हो गए हैं और आगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और हमको कैसे शिक्षा दे सकता है हमारे बारे में? कोई और कैसे बता सकता है हमको हमसे बेहतर? ठीक है, तो ये मान के चलना। हाँ, तो इसका तो बहुत सुंदर संक्षिप्त उत्तर है, उसका डिटेल उत्तर बाद में, कि श्री अरविंद ने तो लेकिन सावित्री अंग्रेजी में लिखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी के बड़े बड़े पंडित, पोइट, थिंकर्स सावित्री को ना पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं। और आपके मेरे उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ इंग्लिश इतनी नहीं आती, सावित्री के स्टडी सर्किल होते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा समझ आता है। तो ये जो चीज है यही अद्भुत बात है, और ये मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं कि नहीं समझ आती है। इंग्लिश जानते हैं, अगर इंग्लिश से सावित्री का समझ का होता तो सबसे ज्यादा सावित्री कहां बिकती? इंग्लैंड में। पोइट्री भी है वहां पे, इंग्लिश पोइट्री है, एक से एक बड़े पोइट हुए हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, ब्लेक हैं, आर्नल्ड हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सावित्री नहीं समझ आती। बर्ट्रंड रसल को नहीं समझ आती, लेकिन उड़ीसा में समझ आती है। क्यों? क्योंकि वो एक भाषा तो है, लेकिन वो ठीक है इंग्लिश, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश इसलिए सीखनी चाहिए कि हम लोग श्योरबिंदो को पढ़ सकें और एक इंटरनेशनल उसके लिए जरूरी है, लेकिन जो समझ है किसी भी भाषा का एक दूसरा साइड होता है, और वो केवल भाषा के बाहरी ज्ञान से नहीं आता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे हिंदी में, मम्मी मम्मी को जाते हैं पूछते हैं, मम्मी मैं जा रही हूँ, परमिशन चाहिए, मम्मी कहती है जा। अब बोला तो उन्होंने जाने को, आपका मन क्या कहता है? बोल रही है, मन में है ना। तो भाषा के अंदर बहुत ऐसी सटल नुएंसेस हैं किसी भी भाषा में, तो इसीलिए सावित्री केवल इंग्लिश जानने से नहीं होता है। और वो सटल नुएंसेस इतने सुंदर सुंदर हैं सावित्री में, पूरी की पूरी सावित्री भारतीय मानसिकता के रंग में ढली है। आपको एक उदाहरण देता हूं सावित्री के अंदर, जो इंग्लिश ऑडियंस कभी नहीं समझ पाएगी, लेकिन हम लोग समझ पाएंगे। सावित्री जब आती हैं अपना वर का चयन करके, तो आती हैं कोर्ट के अंदर, वहाँ राजा बैठे हैं, रानी बैठी हैं, नारद भी बैठे हैं। तो नारद क्या कहते हैं? नारद कहते हैं कि हे पुत्री कन्या, तुम्हारे हाथों की लाली देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत सुखद अनुभव प्राप्त करके आ रही हो। अब देखिए पूरा पैसेज में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तुमको मिल चुका है अपना वर, लेकिन वो इतना राउंड अबाउट वे में कर रहे हैं कि हम लोग इसको समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं कि अरे हमने अपना आई हैव यू नो यू मस्ट हैव फाउंड योर हस्बैंड टेल मी हिज नेम, नहीं। लेकिन एक इंग्लिश मानसिकता को ये समझना बहुत कठिन होगा। बहुत सारे पैसेज हैं ऐसे सावित्री में, इवन जब वो स्पष्ट कहती हैं फादर आई हैव चोजन इट इज डन, उसमें जो एक स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की, वो एक भारतीय मानसिकता से समझी जाती है। तो मुझे तो ये लगता है कि सावित्री में पढ़ने के लिए इंग्लिश ज्ञान के साथ भारतीय मानसिकता जरूरी है। वो भारतीय कंटेक्स्ट की कहानी है, और इसीलिए जब हम उससे देखते हैं तो हमको आसानी से पता चलता है कि इसका सूक्ष्म तत्व क्या बता रहे हैं, बताया जा रहा है। बहुत कुछ है सावित्री में जाने से, पर ठीक है इंग्लिश सीखनी चाहिए सावित्री पढ़ने के लिए और श्री अरविंद के वर्ड्स पढ़ने के लिए। और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ प्लीज। इस गति से, हाँ इस गति से, नहीं वो एजुकेशन सिस्टम के कारण नहीं हुआ। बैठिए बैठिए, वो जो हाँ आप बैठ के पूछ लीजिए, हाँ खड़ा रहने का प्रिविलेज मेरा है। हाँ अच्छा हाँ बोलिए।
और ये बच्चे जो अभी हैं, हमारा टाइम में ऐसे हमने टारगेट नहीं लेके नहीं जा रहे थे कि हमको ये करना है वो करना है, बट वी बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस सिंसियरिटी एंड दैट हम ओबीडिएंट बोल सकते हैं इसको कि इन अदर वे। लेकिन अभी का जो बच्चा है उनका वन पॉइंट टारगेट है वो क्या अचीव करेंगे, मेरे बाय द सराउंडिंग और बाय द टीचर्स, लेकिन वो लोग उसमें ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और एक चीज उसमें एडिशन है वो लोग को वो चीज अचीव करने के लिए जैसे उनको हम जो चीज नहीं है एंड दैट वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि वो चीज है,
ठीक है। पहले मैं आपका जो पहला प्रश्न है कि जो 25 साल पहले जो पढ़े थे आज कंट्रोल कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो एजुकेशन सिस्टम में क्या बुराई था? बुराई तो दिख रही है, कैसा कंट्रोल हो रहा है संसार, ये तो स्पष्ट दिख रहा है और अभी तो और दिख रहा है। तो वो तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा था कि महाभारत के समय क्या सब लोग अच्छे थे, तो मैंने यही कहा कि सब अच्छे होते तो द्रौपदी का वो हाल नहीं होता। तो निश्चित रूप से 25 साल पहले जो पढ़े थे वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें तो एक बहुत पूरी एक टॉक हो सकती है जो कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। तो वो कोई बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, लेकिन एक अच्छा काम किया। 25-30 साल 60s के बाद एक काम शुरू हुआ जिसको हम लोग कहते हैं युद्ध के बाद में जो जो सारे फ्रेम्स थे वो टूटने लगे। तो आया पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म ये सब आया, वो एक फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है, लेकिन उसमें जो सारे उस समय जो ऑर्डर था संसार का वो टूटने लगा और बच्चे रिवोल्ट करने लगे हर चीज से। 60s के बाद से ये प्रारंभ हो गया था, मतलब हम लोग एक तरह से उसी समय की देन है। तो जब वो तोड़ने लगे ये सारे मापदंड, तो वो एक जिसको आज हम कहते हैं एक लिबरल थॉट कि नहीं ये स्वीकार है, ये बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि यही रास्ते पे चलेगा, इस तरह से काम करेगा। उसके बहुत कुछ हानि भी हुई क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें हर चीजें एक सिस्टम और फिक्स तरीके से चलती थी, वहाँ आपका दूसरा प्रश्न आ गया कि भाई बच्चों को इस तरह से करना है, एक बड़ा होगा, जैसे लड़कियों के लिए आप जानते हैं क्या होता है, लड़की शादी करेगी, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेगी, लेकिन उसका शादी घर बार, लड़का जॉब करेगा, फिर ये सब एक फिक्स सिस्टम था। तो वो टूट गया, जो एजुकेशन व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसने ये सब तोड़ दिया। अब क्या है उसके बाद कि अब जब कोई चीज टूट गई, फ्री फॉर ऑल हो गया, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस फ्रीडम में आगे बढ़ गए, लीप ले ली उन्होंने, लेकिन कई लोग हैं जो उसमें कोलैप्स हो गए, ड्रग कल्चर प्रारंभ हो गया, हर तरह की चीजें प्रारंभ हो गई जिसका जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे। जैसे कई कंट्रीज हैं वो नहीं जानते कि हम कैसे इसको हैंडल करें, ड्रग कल्चर एक बड़ी, और भी कई चीजें जो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब प्रारंभ हो गया क्योंकि एक व्यवस्था टूट गई। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं जो खासकर भारतवर्ष के कंटेक्स्ट में ही है, जो आपने कहा ना अचीवर्स, तो अब ये एक नई चीज को लाने की चेष्टा करेंगे क्योंकि पुराना टूट गया, उसमें लिमिटेशन थी, सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, लेकिन प्रोग्रेस एक सीमा में थी। अब टूट गया वो, तो अब बहुत सारे एवेन्यू खुल गए। अब लेकिन इसको कैसे अपने जो फ्रीडम है उसको चैनलाइज करें, तो वो प्रोसेस अभी चल रही है खासकर भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि कई एवेन्यू खुल गए हैं तो ये बच्चे अचीव करना चाहते हैं और अच्छी बात है, ये तो बच्चों का धर्म होना चाहिए कि हम फोकस करें, अचीव करें, कुछ भी असंभव नहीं है। और अच्छी बात यह है कि अब उनको कोई लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। हमारे समय में एटलीस्ट मैं अपना जानता हूँ कि लिमिटेड ऑप्शन थे, जब हम 12th स्टैंडर्ड में, तो मेरे से पूछा था मम्मी पापा ने तुम क्या करना चाहते हो, जब भी पूछते थे तो मेरे को खेलने उलने में मजा आता था और पोइट्री लिखने में, तो मैं बोला मैं कविता कवि बनना चाहता हूँ। इतना परेशान हो गए, जन्मपत्री मेरा दिखाया कि ये लड़का क्या करेगा, क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, लेकिन उनको चिंता हो गया कि ये पोइट बनना चाहता है। तो अंत में क्या थे ऑप्शन, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव IAS, और अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, बेकार हैं, तो पॉलिटिशियन बन जाइए, तो उसमें वैकेंसी हर किसी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी बच्चे बोलते हैं आई वांट टू बिकम ए पोइट, मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ, एक्चुअली जानता हूँ आज की तारीख में, जो इंग्लैंड में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है और सब है, माता पिता उसको कुछ ही पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे से पूछा उन्होंने कि भाई क्या बनना चाहते हो, ऐसी उम्र जैसे मेरा उस समय था 15-16 साल का, वो आश्रम आया था, मिला भी था, बोला मैं पोइट्री लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आलोक दा को दिखाओ अपनी पोइट्री, बहुत सुंदर पोइट्री है। तो अब ये अचीव करना उसमें ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अपने स्वधर्म के अनुसार अब करना चाह रहे हैं। हालांकि फिर भी ओल्ड मॉडल के पेरेंट्स थोड़े उनको डर लगता है कि ये मतलब क्या होगा, लेकिन दिस इज द राइट वे, दैट नेचर इज टेकिंग देम टू अचीव इन थिंग्स जो उनके अंदर बहुत नेचुरली स्वाभाविक रूप से आता है, वो स्वधर्म के अनुसार चलता है। हाँ बच्चे एक मिनट, हाँ ओके ठीक है, तुमसे मैं बाद में पूछ लूंगा, तुम तो हो ही पास में हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे मैं पूछ लूंगा, हाँ याद है मुझे। यस प्लीज टेल मी। ठीक है बहुत अच्छा। तो कोई भी कर्म जो होता है, चाहे वो कोई भी कर्म, एक जनरल प्रिंसिपल ले लेते हैं, उसकी महत्ता इस पर डिपेंड करती है कि अंदर में तुम्हारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो अब देखिए युद्ध है, युद्ध में तो मारते हैं, तो हम लेकिन ये नहीं कहते मर्डर कर दिया। क्यों नहीं कहते मर्डर कर दिया? क्योंकि उसके पीछे शौर्य है, और मर्डर के पीछे जो मंतव्य है बहुत गंदा है, बहुत घृणात्मक है। तो उसी प्रकार से समाधि एक वीर कर सकता है, सारे संसार से स्वयं को विड्रॉ करना और समाधिस्थ हो जाना, और समाधिस्थ होके पूरे संसार से अपना, ये नहीं कि अल्टीमेट ट्रूथ है पर मैं बता रहा हूं, वो एक, इसीलिए आप देखेंगे जैन महावीर, उनका नाम है महावीर, तब कोई चिंता नहीं है, वस्त्र वस्त्र सब कुछ चले गए, और वो लेकिन वो स्थिर रहे और उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया। लेकिन अब कोई व्यक्ति उनको कॉपी करे, बोले मैं अपने कपड़े खोल दूंगा, खाना पीना बंद कर दूंगा, तो महावीर नहीं बन जाएगा। तो सुसाइड क्या है? एक बहुत ही भय और एक कावर्डली एक्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार को फेस नहीं कर सकता, डिफिकल्टीज को नहीं देख फेस कर सकता, अपनी चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकता, और इसलिए वो छुटकारा ना पाना चाहता है उससे, तो सिंफुल से कहीं ज़्यादा वो भ्रम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ऐसे छोड़ेगी नहीं, जो काम अधूरा है, कठिनाई अधूरी है, वो 10 गुना 2 गुना अधिक बढ़ा करके हमारे सामने लाएगी। आपको वो एग्जामिनेशन से गुजरना ही है, और जितने बार आप एग्जिट करोगे, बिकॉज देर इज नो एग्जिट, तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। समाधि एक बहुत वीर व्यक्ति जो तेज से भरा है, अभीप्सा से भरा है, ज्ञान से भरा है, वो अवस्था में समाधिस्थ होके शरीर छोड़ रहा है। मैं उस समाधि की बात कर रहा हूं, महासमाधि। तो वो एक अल्टीमेट ब्यूटीफुल एक्ट है, डिवाइन एक्ट, और सुसाइड एक बहुत ही भीरू दुखी ये सब कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक सिंफुल, क्या मतलब, एक बहुत ही विकृत, एक डार्क एक्ट है। डार्क एक्ट जैसा एक्ट, उसमें हम डार्कनेस में जाते हैं। आत्महत्या इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीवन में ऑफकोर्स आत्मा को नहीं मारा जा सकता, लेकिन आत्महत्या उस सेंस में होती है कि प्रत्येक आत्मा एक लाइफ में एक विशेष प्रयोजन से आती है, और उस प्रयोजन में उसके जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ के द्वार से उसको गुजरना है, उससे ही वो गुजर के बढ़ती है। ईशुपनिषद ये कहती है, इसमें ये ईशुपनिषद में दोनों चीज़ आती है, असुरिया नाम तेलों का प्रत्याभिगच्छन्ति, कि जो लोग इस तरह से अपना सेल्फ को हानि पहुँचाते हैं वो अंधकार के जगत में चले जाते हैं, असुरिया जगत में। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि जो आत्मा का प्रयोजन है वो बार बार अविद्या मृत्युम तीर्थवा, तो वो मृत्यु के द्वार से गुजर के जब कोई व्यक्ति पूरे एफर्ट के साथ जीवन जीता है, तो वो हारे या जीते संसार की दृष्टि में उसको सफलता मिली या विफलता, लेकिन जब वो उस द्वार से निकल के जाता है तो वो विकास करता है। तो आत्महत्या का यहाँ अर्थ केवल इतना है, ये तो खैर एक शब्द है जो लोग कहते हैं, लेकिन जो पर्पस लेके सोल आई थी आपने उसको वो पूरा नहीं करने दिया। किसने? एक प्राण के आवेग में आकर। आत्मा की सुन लेते तो नहीं करते, आत्मा कहती भाई रुक जा। और इसीलिए हर व्यक्ति जो ये घृणित कार्य करता है या बहुत ही, वो कहीं ना कहीं एक कोई आवाज उसको कहती है रुक जा, लेकिन वो नहीं सुनता है। अगर वो सोल की बात सुन लेता तो वो टिका रहता, लेकिन नहीं सुनता है, प्राण के आवेग में आ जाता है, और उस समय फिर प्राण के वशीभूत हो जाता है, अंधकार की शक्तियों के वशीभूत हो जाता है। तो उसने एक प्रकार से जो सोल का प्रयोजन था एक लाइफ में, उसने उसको पूरा नहीं किया। तो इस सेंस में ही हैज कट शॉर्ट द थ्रेड ऑफ लाइफ एब्रप्टली, तो वो नहीं करना चाहिए। इवन समाधि नहीं मिल सकती अगर आप थ्रेड ऑफ लाइफ को एब्रप्टली कट करोगे, तो उसके थ्रू जाना है जीवन के चैलेंजेस को लेके। हाँ बोलो
सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारा टोटल चार युग है, चार युग में हम अभी कलयुग में रहते हैं, तो कलयुग में बहुत घोर पाप होने वाले हैं, और श्री अरविंद और श्री अरमा के माने तो हो गए कि फ्यूचर में हम मानव से अति मानव होंगे, तो सर वो कैसे होंगे?
अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। पर पहले मैं ही करेक्ट कर दूं कि दो तरह से पुराणों के अंदर ये युगों का वर्णन है। एक दृष्टि से ये है कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से अभी भी कलयुग चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा कैलकुलेशन है, उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कि कलयुग समाप्त हो गया है तो अभी हम सतयुग में जी रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? पुराणों के अलावा भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण ये कि आज के जो बच्चे हैं, जिसमें तुम भी इंक्लूडेड हो, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं सच को प्रेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो किसको रेस्पेक्ट करते हैं? जो व्यक्ति ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक जानते हो क्या होता है? जो दिखावा नहीं कर रहा है, दिखावा उनको पसंद नहीं है, हिपोक्रेसी पसंद नहीं है ना आज के बच्चों को, तो ये हिपोक्रेसी पसंद नहीं है। वो कहते हैं जो चीज़ है आप सीधा बोलिए, बोलते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा गोलमोल बात नहीं, सीधा बोलिए। तो ये जो आज के बच्चे हैं और ये जो युग में हम प्रवेश कर गए, ये निश्चित रूप से सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। और नेचुरली वो मनुष्य नहीं बदल सकता है, युग को मनुष्य नहीं बदलता है, भगवान बदलते हैं और काल की गति को वो बदलते हैं। काल की गति को कैसे बदलते हैं? क्योंकि वो काल एक रिदम से चल रहा है और अचानक उसमें वो एक नई चीज ले आते हैं, तो काल के अंदर गति बदल जाती है। जैसे आपका हार्ट टिक टॉक कर रहा है, वो वाला टिक टॉक नहीं है, हार्ट का टिक टॉक, अचानक कोई बात होती है और एकदम टिक टॉक शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टिक टॉक क्यों, कोई चीज़ हुई और वो उसका रिदम बदल गया। तो उसी तरह एक रिदम है जिसके थ्रू ये सब चलते हैं। तो कलयुग का जो पर्पस, और ये युग ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य इस तरह से नहीं, कलयुग में जो ट्रेनिंग दी जाती है मनुष्य को, मैटर शरीर इसके ऊपर काम करने की ट्रेनिंग मिलती है, तो वो ट्रेनिंग जब हो जाती है तब अब नया सतयुग आएगा, शुरू हो चुका है और उसके कई लक्षण हैं। क्या है तुमको कि नहीं आया है ऐसा लग रहा है? मैं तुमको एक चीज बताऊं, आज से 50 वर्ष पूर्व आपकी घर में दादी होंगी, नानी या दादी है ना, आप पूछना उनसे कि दादी या नानी उस समय आप लोग को पढ़ने के लिए फ्रीडम था कि नहीं था, जॉब करने के लिए फ्रीडम था कि नहीं था, आप पूछो। यहाँ आपके बगल बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो बता देंगे, उत्तर दे देंगे, उत्तर मालूम है ना। आपको क्या लगता है कि ये युग बेटर है या 50 साल पहले वाला युग बेटर था? है ना बेटर, ठीक है। आप आज यहाँ बैठ के प्रश्न कर पा रहे हो, 50 वर्ष पूर्व आप बोलते। मैंने भी ऐसी एक सभा में एक पंडित जी से कुछ पूछ लिया था, गुस्सा हो गए थे, मेरा मम्मी को बोला आपका बेटा बहुत तर्क करता है, इसको बोलो बैठ जाए। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने प्रश्न किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इसका संकेत है कि युग बदल गया है और अच्छे की तरफ बदल गया है। बहुत सारे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें, नई तरीके की शिक्षा हो। आज यहाँ पे आप लोग सब बैठे हो एक साथ में, है ना, ये सब नए युग के लक्षण हैं कि आपकी आयु में ये प्रश्न आप कर रहे हो, ये नए युग के बच्चे के लक्षण हैं। पहले जो हम लोग पढ़ लेते थे उसको मान लेते थे, अभी हम लोग उस पर प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर बात है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं कि ये युग बदल गया है। हाँ, हम लोग कितना तेजी से बदलेंगे युग के अनुरूप, ये समस्या है। युग बदल गया है लेकिन हम बदले हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो भगवान दो तरीका से बदलते हैं, एक तो बांसुरी बजाते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हाँ सुदर्शन चक्र लेते हैं, महाभारत भी होता है, तो ये हमको डिसाइड करना है कि युग तो भगवान बदलते हैं, हम लोग नहीं बदलते हैं, लेकिन अब उस युग के अनुरूप उसके गति से हम बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, ठीक है। और बदलने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी हम लोगों ने बात भी की, जो अप्रत्याशित की बात की ना, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, सिंसेरिटी, वो यही बात है कि हम कैसे इस युग के अनुरूप, इस नई चीज के अनुरूप स्वयं को ढालें, ठीक है। हाँ प्लीज।
संभावितता बंधा, बहुत समय राति पाइगले भाई पाखर बहुत शुणा आग्रह प्रकाश करवा कितु अतिक्रांत हो गला ये गोटे शेष प्रश्न धरने भाई आम भाई
और बाकी सब व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई चिंता नहीं है। हाँ, वो प्रारंभ में ऐसा ही होता है कि क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो है वो शुरू में जो टैप है ना वो थोड़ा सा खुलता है, टप 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 पानी आता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत क्लीन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे पानी और बढ़ता जाता है, जितना आप मुड़ोगे क्लीनिंग होता जाएगा, थोड़ा देर बाद वो टप टप की जगह थोड़ा ट्रिकल आएगा, चलने दोगे तो वो धारा बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते पूरी गंगा उतरेगी, ठीक है। तो क्रिएटिव इंस्पिरेशन बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी को पालते रहो और एक्सप्रेस करते रहो, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे वो इंस्पिरेशन बढ़ती जाएगी, उसका सम्मान करो और वो काम करो तो वो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, समय के साथ। ओके अच्छा हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं।
सर, मेरा प्रश्न है कि जो आपने बोला जो खेलते हैं वो आनंद और मजा पाने के लिए खेलते हैं, और जो इंटरनेशनल के लेवल पे खेलते हैं वो मजे के लिए खेलते हैं या हार और जीतने के लिए खेलते
हैं? 100% मजे के लिए। आज हो रहा है ना मैच, बैठ जाओ, क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, लोग पागल हो रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन जीत गया, वैसे क्या स्कोर हुआ है, जीत गया, अच्छा आपको लग रहा है अरे जीत के लिए, वो पता है क्या कर रहे होंगे, 5 मिनट के लिए थोड़ा बाद में दोनों मिल करके साथ मिल के पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब कोई प्लेयर वहां खड़ा होता है ना स्पॉट पर, अगर वो ये सोचने लगेगा हार और जीत तो खेल नहीं पाएगा, उसके खून में आ जाता है, इंस्टिंक्ट में, उसको जब एक अच्छा शॉट लगता है उसको बहुत आनंद आता है, और जब कोई बुरा शॉट लगता है या पकड़ा जाता है तो वो जो दुख करता है ना, इसलिए नहीं कि वो हार गया या आउट हो गया, उसको लगता है अरे ये मैंने क्या गलती कर दिया, ये भी मेरा परफेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। और मैं प्लेयर्स को जानता भी हूँ ऐसे, हार जीत के हिसाब से जो खेल खेलते हैं ना वो पूरा खेल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब मजा जो मैं कह रहा हूँ वो मजा इस सेंस में नहीं है कि मजा लेके खेल लो, लेकिन वो खेल का आनंद होता है अपना, जो आनंद के लिए खेलते हैं, ठीक है। और ये संसार भी एक तरह का खेल है, बहुत ज़्यादा अगर सक्सेस, अब उसमें सक्सेस की जगह परफेक्शन आना चाहिए, एक्सीलेंट करूँ मैं, वो शॉट मेरा ऐसा होना चाहिए कि गलती नहीं हो, तो वो लोग क्या करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपने गैरी सोबर्स का नाम सुना है, क्रिकेट का गैरी सोबर्स, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, उनके पिता बहुत संसार के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू मी, परहैप्स द बेस्ट ऑलराउंडर, तो उनके जो पिता थे वो धोबी थे, तो ये क्या करते थे, ये कैसे प्रैक्टिस करते, आपने देखा है ना धोबी का जो पट्टा होता है, तो वो बॉल को ऐसे मार मार के प्रैक्टिस करते थे, और वो संसार के इतने बड़े खिलाड़ी बने, ठीक है, एन्जॉय कर करके खेल को। और अगर वो ये सोच के जब तुम आते हो ना कि ये मैं, वो प्रैक्टिस क्यों करते थे बार बार कि मैं शॉट को परफेक्ट लगाऊं, मेरा बॉल एग्जैक्टली वहां पर गिरे, ये सब मैं टेबल टेनिस क्रिकेट में मेरा भी यही होता था, वो कितना भी अच्छे शॉट है, वो जो बॉल जब शॉट दे रहे हो ना आप टेबल टेनिस में, तो मेरा लक्ष्य होता था वो वाइट वाला में गिरे, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था वो उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। मेरा शॉट का परफेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो केवल व्हाइट लाइन, वो छोटा सा लाइन होता है ना टेबल टेनिस में, वहां पर गिरे। हर एक प्लेयर उसी तरह से प्रैक्टिस करता है। परफेक्शन एक्सीलेंस जरूरी है, सक्सेस फेल्योर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप अगर परफेक्शन और एक्सीलेंस से करोगे कोई काम तो आपको आनंद भी आएगा। तब आपका आनंद इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है कि उसने उठाया कि नहीं उठाया, वो लूज कर गया पॉइंट। टेबल टेनिस का बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे संतोष नहीं है, मैं अपना सर्विस को और अच्छा करना चाहता हूँ, तो मेरा आनंद अब उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन चांस ज़्यादा उस यही रहता है कि जो परफेक्शन और एक्सीलेंस का प्रयास कर रहा है, सक्सेस भी जनरली उसके पास आती है। अर्जुन का भी यही स्टोरी है। अर्जुन को थोड़ी पता था एक दिन मैं युद्ध लड़ूंगा, रात को उठ के वो तीर चलाने का प्रैक्टिस करता था। तभी उसके गुरु बोले ऐसा नहीं मिलेगा कोई डिसाइपल, रात को सब सो जाते हैं, वो किस लिए? ये नहीं कि मेरे को मारना है किसी को, ऐसा नहीं है। वो कहता था धनुर्विद्या मुझे ये सब तो आ गया, लेकिन रात को तो नींद आता है, और नींद आता है तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, तो नींद पे भी जीतना मुझे चाहिए। इसीलिए अर्जुन का एक नाम है ना गुड़ाकेश। वो नींद पर जीत के अंधेरे में देख के तीर कैसे चलाना है, उसमें वो परफेक्शन किए थे। इसीलिए वो जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तो एक समय ये काम भी आ जाता है उनके। ओके, वो जॉय ऑफ डूइंग बेटर एंड बेटर एंड नॉट फॉर सक्सेस फेल्योर। हाँ,
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब श्रीमा इंडिया आएंगी, व्हाई डिड शी चूज टू स्टे पुडुचेरी आउट ऑफ ऑल प्लेसेस?
वो तो बैठ बेटा, तो माँ जब पांडिचेरी आई, सॉरी इंडिया आई, तो वो तो पांडिचेरी के लिए आई थी। तो उसका स्टोरी ऐसे, बैठ जाओ, कि श्रीमा तो भारत भ्रमण के लिए नहीं आई थी। वो बहुत योग साधना में बहुत सब कुछ, समझो मैं तो एक शब्द में बोलूँ, सब कुछ रियलाइज कर चुकी थी जो भारत के योगियों ने किया है, और भी बहुत कुछ वो रियलाइज करने लगी थी जो जिसका कहीं वर्णन नहीं है। तो उनके हस्बैंड आए थे पांडिचेरी, और सुना था उन्होंने कि भारत में बहुत बड़े योगी हैं एक श्री अरविंद के नाम से। तो माँ ने उनको एक सील बना के भेजा था कि ये उनको दिखाना और उसका मीनिंग पूछना उनसे। तो वो देखना चाहती थी सच में ये सिद्ध हैं कि नहीं। तो जब वो देखा, श्री अरविंद ने उसका अर्थ बता दिया, तो माँ समझ गई कि यही हैं जहाँ मुझे जाना चाहिए। फिर भी वो अपने ध्यान में बहुत सारे योगी गुरु मास्टर से मिलती थी। उनमें से एक थे जिनके साथ वो अक्सर उनकी अपने इनर ध्यान में उनकी मुलाकात होती थी, जिनसे उनको बातें होती थी, बहुत कुछ होता था। वो उनको कृष्ण कहती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि कृष्ण कौन है। और उन्होंने उनको पहली बार ऐसे देखा था, वो धोती ड्रेस ऊपर में, तो उनको भारतवर्ष के बारे में कुछ नहीं पता था कि धोती ऐसा भी पहना जाता है। उनको लगा कोई गॉड है, ग्रीक गॉड, लेकिन वो कृष्ण कहती थी उनको। तो जब वो आती हैं फिर पांडिचेरी 1914 में जब पहली बार आई, तो वो इसीलिए आई कि मैं मिलना चाहती हूँ इनसे, और कोई प्रयोजन नहीं था। तो जब वो मिली श्री अरविंद से, तो वो उन्होंने इमीडिएटली देखा कि वो जिनको वो देखती थी अपने अंतर दर्शन में कि ऐसे धोती जिनको वो कृष्ण कहती थी बहुत शुरू से और 13 साल की उम्र से, और जिनको उन्होंने अंतर दर्शन में प्रणाम भी किया था बिना जाने कि भारतवर्ष में ये शिष्टाचार है, तो वो जान गई कि यही वो हैं जिनको मैं जानती हूँ और इन्हीं के साथ मेरा काम है। तो फिर वो वहाँ से कहीं गई नहीं, आसपास पांडिचेरी के कराईकाल माहे इलेक्शन के कारण गई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को जाना था। बाद में वो कहीं नहीं गई, 20 में आके फिर जाना पड़ा क्योंकि वार था। फिर वो आई केवल श्री अरविंद के साथ में वो काम करने के लिए जो वो करने आई थी। किसी ने उनसे पूछा था कि आप हिमालय घूम के आइए, भारत में बहुत कुछ है घूमने का। तो माने कहा वो सब भ्रमण मैंने अपने सूक्ष्म शरीर में किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा बनारस का ऊर्जा बहुत अच्छा है, हिमालय में उन्होंने अपना एक पूर्व जन्म का शरीर भी देखा एक जगह पर बरीड स्नो के अंडर। तो वो केवल श्री अरविंद से मिलने आई थी, क्योंकि उनको ये ज्ञान था कि यहीं पर अब इनके साथ ही मुझे वो नई सृष्टि करनी है। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि इंडिया आ गई और श्री अरविंद इंडिया में थे, नहीं तो सोचो यहाँ हम लोग उड़ीसा में कटक में बैठ के बात कर रहे हैं, अलास्का या अल्जीरिया में होते तो क्या होता। तो कृपा हो हम लोग के ऊपर, तो कृपा हो गया। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद, जय माँ। अच्छा बच्चे।